परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में दंडवत करते हुए और भक्तजन रूपी रस है जो भ्रमर स्वरूप है महाराज श्री रूपी पुष्प के समीप में पराग रस लेने के लिए भक्ति रस लेने के लिए जो भ्रमर स्वरूप भक्त है वो मडरा रहे, ऐसे भ्रमर भृंग गण भक्तगण पुराणों की कथा का प्रसंग। पुराणों में कोई ऐसे विषय नहीं है जो मनुष्य जीवन से संबंधित न हो, चाहे वो जीवन में वस्त्रों का प्रकरण हो तो भी पुराण कहते हैं कि हमें कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, पुराण यह भी कहते हैं कि हमें बैठना कैसे चाहिए, पुराण यह भी कहते हैं हमें सुनना कैसे चाहिए, पुराण यह भी कहते हैं कि हमें देखना कैसे चाहिए, विमल दृष्टि से देखना चाहिए, मुख प्रसन्न होना चाहिए और चेष्टा हमेशा कौवे जैसे होनी चाहिए ग्रहण करने के लिए। साथ में पुराणों की जब व्यवहारिक बातें आती है तो एक व्यवहारिक बात का उल्लेख करता हूं आपके सामने। नारोहेद विषमाम नावम न वृक्षम न च पर्वतम न लोष्ठे न काष्ठे न चास्मना न फलद्रुमान। कहते हैं कि यदि नाव हो ना, नाव वह विषम स्थिति को प्राप्त हो, हिलडुल रही हो अथवा उसमें कहीं छिद्र हो गया हो, अथवा नाव को चलाने वाला नाविक यदि मद्यपान किया हो तो वह भी नाव के द्वारा ही उसका ग्रहण होता है, तो ऐसे नाव पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए। नाव संसार रूपी सागर से हमें जल में चलती है, लेकिन यदि नाव में नहीं जाते हैं तो जो हमारा नयन करे, हमें जो ले जाए गुरु अथवा उपदेशक, वह भी नाव स्वरूप है। यदि वह पारंगामी है, पार जाने का सामर्थ्य रखता है, तो उसके साथ जरूर जाना चाहिए। अथवा हम जिस गाड़ी पर चढ़े हैं, एसटी बस है, वह भी नाव स्वरूप है, क्योंकि वो हमारा नयन कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है। लगे कि ये कमजोर है और हमको सूरत तक की यात्रा करनी है, संदेहास्पद हो तो पैसा क्यों बर्बाद करके चढ़ने का, यह उसकी विषमता है, यह विडंबना है। तो ये व्यवहारिक बातें पुराण बड़ी ही सामान्य रूप से कह रहे हैं। न वृक्षम, वृक्ष भी यदि विषम हो उस पर चढ़ना नहीं चाहिए। कोई कोई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी डाले शाखाएं मोटी मोटी होती है, मोटी मोटी मतलब बड़ी नहीं, चौड़ी है, स्थूल, लेकिन उनमें जोर नहीं लगता। ऐसे सेमल का वृक्ष है, उसकी डाले बहुत कमजोर होती है, उस पर चढ़ेंगे तुरंत टूट के चला आएगा, है ना, उसका कच्चा होता है सब डाले, देखने को मोटा मिलेगा। जैसे कोई कोई लोग बड़े मोटे होते हैं लेकिन शरीर में दम नहीं होता है, थोड़ी दूर चलेंगे तो हांफने लगेंगे, और कोई पतले होते हैं वो अत्यधिक दौड़ सकते हैं, अत्यधिक काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को समझ करके कि इनकी स्थिति क्या है, फिर उनके साथ व्यवहार करें। नच पर्वतम, पर्वत पर नहीं जाना चाहिए। पहला ज्ञान, यदि जाए देव दर्शन के लिए, अब तो सीढ़ियां हो गई है, बड़ी उपकार हो गया है, लेकिन अन्य पर्वतों पर चलने के लिए बड़े धीरे धीरे जाया जाता है, नहीं तो पर्वत पर चढ़ने से ऑक्सीजन का अभाव होता है, वहां लोगों को श्वास फूलता। बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, तो पहाड़ी पर विषम पहाड़ी हो, यदि समीकरण न हो, सीढ़ियां नहीं हो, चढ़ने लायक स्थिति न हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्राण भय है वहां। जो महात्मा है महाराज श्री के जैसे सिद्ध, उनके लिए कोई बात नहीं। आप कंटक नहीं, आप पहाड़ लाके खड़े कर दोगे, फिर भी वो सूक्ष्म रूप से योगी है, निकल जाएंगे। लेकिन हम सामान्य मनुष्यों के जीवन के लिए इन पुराणों का संदेश है। न लोष्ठे न चकाष्ठे न, वृक्ष में फल लगा हो तो उसे डंडे से मारना नहीं चाहिए, फिर मिट्टी के ढेले उठा करके भी तोड़ना नहीं चाहिए, निषेध है। चाशमना पत्थर के टुकड़े भी वृक्ष पर नहीं मारना चाहिए। न च फलद्रुमान, जो फल वाले वृक्ष हैं उन पर डंडा नहीं मारना चाहिए, पत्थर नहीं मारना चाहिए, और मिट्टी के ढेले से भी नहीं मारना चाहिए। अर्थात वृक्ष का फल पक करके स्वयं आए उसे ग्रहण करना चाहिए। एक बार का प्रसंग है, भगवती शिवा शिव की आराधना कर रही थी पति रूप में प्राप्त करने के लिए। बहुत दिनों तक फलाहार किया, उसके बाद पत्तियों का पान करती थी, पत्तियों को चबा करके रहती थी। जो वृक्ष की पत्ती पांजड़ा होता है ना, पांजड़ा जिसको आप गुजराती में कहते हो पर्ण, तो उसको संस्कृत में पर्ण कहते हैं। तो उन सूखे हुए वृक्ष के पत्ते जो ऊपर से गिरते थे पांदड़े, उनको उठा करके वो खाती थी, तोड़ती नहीं थी, क्योंकि जो बिल्व का वृक्ष है वह महादेव जी को प्रिय है, और उसको तोड़ूंगी तो भगवान को दुख होगा। अमृतोद्भव श्रीर वृक्ष महादेव प्रिय सदा, चिनोमि शिव पूजार्थम निर्विघ्नम कुरु सर्वदा। बिल्व के वृक्ष का भी प्रार्थना करके बिल्व ग्रहण का विधान है। तो भगवती बेल के पत्ते भी तोड़ करके नहीं खाती है, सूखी पत्तियों को खा रही है। उसके बाद उस पत्ते को भी छोड़ देती है, इसलिए उनका नाम है अपर्णा। अविद्यमानम पर्णः सहायः यस्याः सा अपर्णः, जो पत्ते भी अब नहीं खा रही है, पहले पर्ण खा के रहती थी, अब अपर्णा हो गई। अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती, और बिना पत्ते खाए सूखे पत्ती भी अब नहीं खा रही है। क्यों? आकि यह प्रभु का स्वरूप है, मैं उनके विरह में यह भी त्याग दे रही हूं, यह ही उनका योग है, और हवा पीकर के श्वास मात्र रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इन फल इन वृक्षों में भी श्रीफल का वृक्ष है, श्री वृक्ष है, यह भगवान को प्रिय है, और भगवान का कण कण में वास है। तो बताइए भला, यदि भवानी की ऐसी तपस्या थी तब उन्हें भव मिलते हैं, तो यहाँ जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में जो फल है वह आपके लिए ही है, आपको डंडा मारने की जरूरत नहीं है। फल की कामना से वृक्ष के पास जाइए, वृक्ष को प्रणाम करिए, वहां उसका सेवन करिए, आपको स्वयं फल की प्राप्ति होगी, फल पकेगा, गिरेगा, आपको मिलेगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो पुराण है वह निगम वेद रूपी वृक्ष के फल है। कैसे? तो पके हुए फल है, मतलब सामान्य लोग ऊपर के फल को तोड़ नहीं सकते हैं, जो जमीन पर आकर के धराशायी होता है, लोगों के लिए आता है, क्षमा जो धरती माता है उनके शरण में आता है, उस फल को हम उठा करके पान करते हैं। क्यों? कि फल के वृक्ष को हम कष्ट न प्रदान करें। ये पौराणिक उद्धरण हमारे जीवन के लिए है। पुराणों में ऐसी ऐसी बातें की जाती है जो बड़े ही सूक्ष्म बातें हैं जीवन की, एक एक वृक्षों को न कष्ट दे। तुलसी तोड़े तो तुलसी तोड़ने के मंत्र बतलाए हैं, रविवार, मंगलवार, अमावस्या और द्वादशी, एकादशी, इन तिथियों को तो निषेध ही है, लेकिन यदि तुलसी दल न हो तो तुलसी के नीचे के वृक्ष के पत्ते, जो पत्ते गिरे हों सूखे पीले, वह भी भगवान विष्णु को प्रिय है, उनको कष्ट होता है, लेकिन भगवान के लिए आया है कि तुलसी तोड़ना हो तो त्वदंग संभवे न त्वाम, आपके अंग, आप जिस अंग से उत्पन्न हुई हो, त्वदंग संभवे न त्वाम पूजयामि यथा हरिम तथा नाशय विघ्नम मे ततो यान्ति पराम गतिम। हे भगवती, मैं आपके अंग की पूर्ति के लिए ही आपको ग्रहण कर रहा हूं, इस विषम काल में आज आपका स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं आपके अंग स्वरूप भगवान विष्णु के अर्चन के लिए, इसलिए जो हमारे विघ्न हो उस विघ्न को आप क्षमा करो, ये भाव है तुलसी के पास। तो जहां एक एक वृक्ष में भाव है, ऐसा विचार, ऐसी जीवन पद्धति यह भारतीय है। यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, यह पुरानी है, यह पुरातनी संस्कृति है, यह भारतीयों की संस्कृति है। काल को भी कहते हैं कि काल भगवान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल की जो उपेक्षा करता है उसे काल भगवान से वो उपेक्षित हो जाता है। कहता है काल नहीं जन्म लेता है और नहीं काल का अंत होता है, इसलिए काल को बतलाया अनादि।